पृष्ठ संख्या 47। शक्तिशाली केंद्र। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं था। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सिद्धांत की उन्होंने जमकर निंदा की। भारतीय संविधान का मसौदा पेश करते समय भी स्थानीय स्वशासन के प्रति उनका ऐतराज छिपा नहीं रह सका। उनकी मान्यता थी कि ग्राम इकाइयों का देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। भारत बार बार गुलाम होता रहा और गांव के लोगों ने उस गुलामी के खिलाफ कभी बगावत नहीं की। उन्होंने जो मसौदा संविधान का प्रस्तुत किया था, उसमें गांव के इकाई की कोई चर्चा नहीं थी। संविधान सभा में गांव को ताकत देने के बारे में काफी दबाव पैदा हुआ। तब डॉक्टर अंबेडकर अधिकांश सदस्यों की भावनाओं के सामने झुककर राज्यों को ग्राम सभाओं के बारे में कानून बनाने का अधिकार देने की व्यवस्था पर सहमत हो सके। ऐसा मानने के पीछे उनका तर्क था कि छुआछूत और जातिगत वैमनस्य का ग्रामीण जीवन पर अधिक प्रभाव है। ग्राम सभाओं को अधिक शक्ति देने का अर्थ था गांव की सशक्त जातियों ब्रैकेट में सवर्णों ब्रैकेट क्लोज के वर्चस्व को स्वीकार कर लेना। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता का रसास्वादन करने से अधिसंख्य पिछड़ी जाति की आबादी को और पीछे ढकेलना। उनकी मान्यता थी कि यदि केंद्रीय सत्ता मजबूत होगी तो संविधान में आम नागरिकों को दिए गए अधिकारों की निगरानी अच्छे ढंग से हो सकती है। इसीलिए उन्होंने मजबूत केंद्र का हमेशा समर्थन किया। वे चाहते थे कि केंद्रीय सत्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा हेतु कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों की सहायता में आगे आए। अस्पृश्यता संबंधी विधेयक पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि विधेयक में एक विशेष धारा रखी जाए कि उक्त कानून को केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। अंबेडकर राज्यों द्वारा इस कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि समवर्ती सूची में इसे रखकर राज्य दावा करेंगे कि यह कानून उनकी भी परिधि में आता है, इसीलिए इसे लागू करने की उनकी जिम्मेदारी है। अंबेडकर की सोच थी कि राज्याधीन सेवाओं व उनके अधीनस्थ स्थानीय सवर्ण मानसिकता के लोगों के प्रभाव में रहेंगे और उनके चलते अस्पृश्यता विरोधी कानूनों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा। उनकी मान्यता थी कि यह कानून समवर्ती सूची में जरूर है, लेकिन यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का कानून है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा हेतु केंद्रीय कानून बनाए जाने का संसद को ही अधिकार है। उसी तरह अस्पृश्यता निवारक कानून निर्माण और कार्यान्वयन भी केंद्रीय सरकार का अधिकार रहना चाहिए। मूलभूत अधिकारों की सूची बना देने मात्र से सभी को अधिकार नहीं मिल जाएंगे। इसके लिए संस्कार पैदा करना पड़ेगा। जब तक इन अधिकारों के बारे में पूरी जागरूकता न आए, केंद्रीय सरकार कानून बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक के सभी अधिकार अपने में निहित कर ले। पृष्ठ संख्या 48। संविधान के उद्देश्यों पर हुई बहस में उन्होंने हस्तक्षेप किया और 17 दिसंबर 1946 को कहा, जवाहरलाल जैसे समाजवादी विचार के व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव से मुझे निराशा हुई। इन्हें इस प्रस्ताव के माध्यम से और आगे जाना चाहिए था। फ्रांस की संविधान सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा की थी। इन घोषणाओं के लगभग 150 वर्षों बाद वे सभी लक्ष्य वहां के लोगों के जीवन का अंग बन गए। भारत जैसे अंधविश्वासी देश में भी यही स्थिति होगी। यह सभी सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण के हिस्सा बनेंगे, इसीलिए अनावश्यक रूप से इनकी उद्घोषणा के क्या लाभ? केवल अधिकारों की घोषणा से कुछ नहीं होगा यदि विकल्प न सुझाए जाएं, मनुष्य को अधिकार जता दिया जाए उससे कुछ नहीं होगा। यदि विकल्प न दिए जाएं, वाजिब रास्ता न सुझाया जाए, इस प्रस्ताव में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मानव का जीवन और संपत्ति कानून की विहित प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जाएगा। यह सभी बुनियादी अधिकार कानून और नैतिकता के हवाले हैं। आज की अफसर शाही फैसला करेगी कि अधिकार क्या है और नैतिकता क्या है, इनके निर्धारण की कसौटी क्या है। समयानुसार अफसर शाही अलग-अलग अर्थ निकालेगी और यह मूल अधिकार मृत प्राय जैसे रहेंगे। इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय की बात करते हैं। अगर इस प्रस्ताव में वास्तव में निष्ठा है और मुझे कोई संदेह नहीं कि प्रस्तावक के मन में ऐसी निष्ठा है, तो ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे आर्थिक, सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्योग और जमीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आगे की सरकारें इसे कैसे कर सकेंगी यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी नहीं है तो। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत शीघ्र दुनिया की कोई शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकेगी। हम अपने सभी जाति धर्म के झगड़ों के बावजूद एक देश बनकर रहेंगे। एक समय आएगा जब मुस्लिम लीग के मुसलमान भी समझेंगे कि एकता में ही, एक भारत में ही उनका भी कल्याण है। हमको एक ऐसे मार्ग की तलाश है जो हमारे बंटवारे के रास्ते से एकता की ओर ले जाए। हम बहुमत वाली पार्टी से खास दरख्वास्त करते हैं कि दूसरों की अलगाववादी प्रवृत्ति को ताक पर रख कर उनके पूर्व ग्रहों को भूल कर सच्चे राजनेता के भाव से जो लोग एकता की राह पर चलने को तैयार नहीं हैं, उन्हें भी साथ लेकर देश के राजमार्ग पर चलने का काम करें। हमें अपने विरोधियों के प्रति दुराग्रह को छोड़ देना चाहिए और उन्हें मुख्य धारा में प्रवेश करने के लिए साथ लाना चाहिए। यदि हम साथ साथ लंबी दूरी तय करेंगे, तो वही हमें एकता के मार्ग पर लाने की राह होगी। हमारी अपील होगी कि सभी को साथ लाने की कोशिश हो। इस प्रस्ताव का पैरा 3 कहता है कि इस देश में दो विभिन्न तरह की राजतंत्र ब्रैकेट में पॉलिटी ब्रैकेट क्लोज व्यवस्था होगी। एक तो नीचे के स्वायत्त शासी राज्य या वैसे राज्य जो भविष्य में भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे, इन स्वायत्त शासी हिस्सों को पूरा अधिकार होगा, उन्हें रेसिड्यूरी अधिकार भी होंगे। अगर प्रांतीय इकाइयों के ऊपर एक संघीय सरकार होगी जिसके पास कानून बनाने के कुछ अधिकार होंगे तथा प्रशासकीय कार्यकारी अधिकार होंगे। मुझे वर्धा में कांग्रेस के पास प्रस्ताव अथवा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की कोई झलक इस प्रस्ताव में देखने को नहीं मिली। हम इस तरह की ग्रुपिंग की धारणा में विश्वास नहीं रखते। हम मजबूत, एकताबद्ध, केंद्रीभूत शासन चाहते हैं। हम 1935 के कानून के अंतर्गत गठित केंद्रित व्यवस्था से भी अधिक मजबूत केंद्र चाहते हैं। मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के लंबे अनुभव के बावजूद मजबूत केंद्रीय सत्ता की वकालत छोड़ दी है। पृष्ठ संख्या 49। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि यदि राज्यों के विभिन्न गिरोह स्वेच्छा से केंद्रीय सत्ता में अपने अस्तित्व को विलीन कर ले, तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसी समय इस प्रस्ताव को पास करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सुलह सफाई की, ऐसे प्रश्नों को इस या उस पार्टी की प्रतिष्ठा के आधार पर निश्चित करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक राष्ट्र, वहाँ की जनता के भविष्य का निर्धारण करने जा रहे हैं, तो किसी दल या उसके नेताओं की प्रतिष्ठा के कोई मायने नहीं होते। हमें तो आज इस स्थिति से उबरने के तीन रास्ते दिख रहे हैं। या तो एक पार्टी दूसरे के समक्ष आत्मसमर्पण करे, या सुलह सफाई हो या जंग हो। कुछ सदस्य कहते हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। हमें खेद है कि कुछ लोग इस देश के राजनैतिक सवालों का समाधान भी युद्ध के द्वारा करना चाहते हैं। कुछ ब्रिटिश लोग अमेरिकी उपनिवेशों को ताकत के बल पर वहाँ के लोगों की इच्छा के खिलाफ अपने में मिलाना चाहते थे। तभी वर्क ने कहा, शक्ति का प्रयोग अकेले समस्या का तात्कालिक निदान है। यह क्षणिक तौर पर दबा देगा, किंतु आगे उभार होने पर यह ताकत से नहीं दब सकता। विजित राष्ट्र बार बार दमन से शासित नहीं होते, आतंक से शक्ति का एहसास नहीं होता, तथा सामरिक तैयारी कोई विजय नहीं है। यदि आप विजयी नहीं होते और साधन विहीन हो जाते हैं, सुलह सपाटा विफल होने पर शक्ति बनी रहती है, लेकिन यदि ताकत विफल हो जाए, तो भविष्य में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कभी-कभी दया से भी शक्ति और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वे कभी पराजित हिंसा से दयावश भी प्राप्त नहीं होते। जो कुछ भी संघर्ष करके पाया जाता है, वह पूर्ण अथवा वह नहीं होता जिसके लिए जंग होती है, बल्कि टूटा, बर्बाद और बिखरा हुआ तत्व ही प्राप्त होता है। जिन लोगों के भी मस्तिष्क में यह बात हो कि मुसलमानों को झुकाकर हिंदू मुस्लिम एकता का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, या उन्हें दबाकर या युद्ध कर समस्या का समाधान किया जा सकता है, उन्हें संविधान के प्रति झुकाकर अथवा उनकी इच्छा के खिलाफ संविधान बनाकर उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ऐसी चीज चिरंतन अथवा स्थायी नहीं होगी। वर्क के शब्दों में, शक्ति छोड़ना आसान है, लेकिन बुद्धिमत्ता देना कठिन है। यदि संविधान सभा को इसकी सार्वभौमिकता पर नाज है, तो यह घमंड बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए। वह एक रास्ता है जिससे हम सभी वर्गों को अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो हमें एक रख सके। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव को रखा था। इस प्रस्ताव के छठे अंश में स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी क्षेत्रों तथा अन्य दलित और पिछड़े वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया था। वे बार बार केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय की वकालत करते थे, लेकिन यह प्रश्न भी करते थे कि अकेले केंद्रीय न्यायपालिका से कुछ नहीं होगा यदि उसके पास कानूनों का पालन कराने की शक्ति न हो। गोलमेज सम्मेलन में 22 अक्टूबर सन 1931 को, जब उन्होंने संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संघीय न्यायालयों के मुकाबले ज़्यादा व्यापक होना चाहिए